ओम शांति। आज भी बाबा ने मुरली में पूर्वजों को याद किया है कि आप सभी पूर्वज हो और पूर्वज हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जो हमारे पूर्वज हम दिखाते हैं मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण आदि, सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो बाबा चाहते हैं हमारी स्थिति भी वैसी हो। हम आते कई बार हम लोग योग की स्थिति में अनुभव करते हैं तो हमें ड्रिल कराते हैं, पूर्वज स्थिति की ड्रिल। तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम जैसे सकाश दे रहे हैं। तो केवल योग में पूर्वज स्थिति की अनुभूति करने से वो ऐसी स्थिति नहीं बनती या औरों को वो अनुभूति नहीं होती, जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन में ये महसूस करें कि सच में हम पूर्वज हैं। जो हमारे सामने आते हैं, चाहे वो बीके हों चाहे नॉन बीके हों, तो हम उनके भी पूर्वज हैं। जैसे अभी भाई पूछ रहे थे कि दादी को किसने देखा, तो बहुतों ने नहीं देखा, तो दादी उनके लिए पूर्वज हैं। तो हम भी किसी न किसी के लिए पूर्वज होंगे, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं। हो सकता है पिछले जन्म से में कि हम किसी के बड़े थे, आज हम छोटे हैं। तो हम सभी पूर्वज हैं, लेकिन पूर्वजों की निशानियाँ क्या हैं वो हमने दादियों के जीवन से देखी कि अगर हम पूर्वज स्थिति का अनुभव करते तो हमारा व्यवहार कैसा हो। मैं शुरुआत करूँगा मम्मा की स्थिति से। जब मम्मा को ये मालूम चला कि वो जगत अम्बा है, माँ सरस्वती है, तो उनके जो व्यवहार था, उनकी जो फीलिंग्स थी, औरों के प्रति जो भावनाएं थी, वो भी वही रही कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी पूर्वज हूँ, मैं माँ हूँ। तो उनका व्यवहार ऑटोमेटिकली वैसा हो गया। इसी स्टेज से दीदी निर्मला ने बहुत ऐसा अनुभव सुनाया जो छप गया। वो ये था कि वो बॉम्बे में मेट्रो उसमें लोकल जो गाड़ी है, वहाँ से मामा और कुछ बहनें जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो एक मछुआरन उस डब्बे में आ गई। तो मछुआरन आई तो ऑटोमेटिकली स्मेल आई, तो लगभग सभी बहनों ने नाक पे रुमाल दे दिया, मामा ने नहीं। बाद में जब वो चली गई तो मामा ने बोला, उसको कैसा लगता होगा आप कि मुझे देखते ही लोग मुंह पे रुमाल रख देते हैं, भगवान ने मुझे उस परिवार में जन्म क्यों दिया, जबकि उसका हिसाब किताब है या जो भी उनका रोल है वो कर रहे हैं। लेकिन मामा को ये ख्याल था कि वो उसका जो दिल में अटैक नहीं आना चाहिए, उसको फील नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी छोटी हूँ या मैं ऐसी जात में जन्म लिया है। तो हमें सीखने को मिलता है कि हम अगर व्यावहारिक जीवन में अभी तक ये सोचते हैं, बीके बनने के बाद भी ये सोचते हैं कि ये इस जाति का है या वो उस जाति का है, या हमारा क्लोज रिलेशन उस लेवल के लोगों के साथ रहता है जो हमारी जात के हैं, तो वो हम पूर्वज स्थिति का अनुभव, मैं कहूँगा, नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े बन जाएं या हम छोटे हैं या कोई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हमें अगर पूर्वज स्थिति की अनुभूति करनी है या हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुँचाने हैं, तो हमें पहले सबको अपना समझना होगा। हम अपना समझ के उनको प्यार देंगे, उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, तो ही हमारी शुभ भावनाएँ उन तक पहुँचती है, अदरवाइज नहीं। ऐसी चीज़ हमने दादी प्रकाशमणि और सभी दादियों में देखी। मैंने नहीं देखा कभी दादी ने किसी को किसी की कास्ट या रिलीजन के अनुसार बिहेव किया हो। दादी प्रकाशमणि ने मधुबन में सब प्रकार के भाई बहनें आते हैं, और कोई किस जाति से बिलोंग करता है, कोई किस जाति से बिलोंग करता है, आपको मधुबन में तो जब आते हैं तो अपने उसी ड्रेस में उसी रॉयल्टी में आते हैं। लेकिन दादी को मालूम भी होता था तो भी दादी ने कभी ये फील नहीं दिया किसी को कि वो कम हैं। दादी हमेशा यही समझती थी कि या यही महसूस कराती कि जैसे दादी जी हैं वैसे ही वो भी हैं, जैसे बाबा ने दादी जी को चुना है वैसे उनको भी चुना है, उतना ही रेस्पेक्ट देंगे। आपने एक पिक्चर देखा होगा दादी जी का, दादी जी इटली गए थे तो वहाँ छोटा सा परिवार होता है बीकेएस का, तो जो प्रोग्राम अरेंज करना था उसमें वो बहन पर्दे वगैरह लगा रही हैं, तो दादी जी सीढ़ी पकड़ के खड़े हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो दादी जी ने कभी भी ये महसूस नहीं कराया कि मैं तो हेड हूँ, मैं तो टाइम पे आऊँगी, स्टेज सजा के रखोगे तभी मैं आऊँगी, लेकिन नहीं, देश में विदेश में दादी जी ने सबके साथ मिलके सब कार्य में मदद भी की, अगर कहीं भोजन नहीं बना हुआ है तो भोजन बनाने में भी मदद की। इस प्रकार से दादी जी ने सभी को सब प्रकार का प्यार देते हुए महसूस कराया कि जैसे आप बाबा के बच्चे हैं ऐसे मैं भी बाबा की बच्ची हूँ, आप किसी भी एंगल से छोटे नहीं हैं। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं मधुबन में जो भाई बहने आते हैं उसमें वो चीज़ कम है, तो अगर वो हम धारण करेंगे तो ही हम अपने को पूर्वज स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। भले दादी जी का सबके प्रति प्यार था, लेकिन दादी जी का जो दृष्टिकोण था वो आगे बढ़ाने वाला था, ऐसे नहीं कि प्यार में मोह में, जैसे कहते हैं ना बच्चे में मोह है तो वो उसकी तरफदारी इस प्रकार करें कि वो लेजी हो जाए, नहीं, इस प्रकार का कभी भी दादी जी में नहीं देखा। प्रशासन सबके लिए एक जैसा है, कभी कभी हम दादी जी को देखते हैं मधुबन निवासी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, थोड़े समय पहले वो वीडियो देखा हमने कि दादी जी सबको एक जैसा ही, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं कि ये तो मेरा नज़दीक वाला है तो इसको बाबा से एक्स्ट्रा प्यार मिल दिलाऊं मैं, लेकिन दादी जी ने ऐसा नहीं देखा। प्रोग्राम बनाया दादी जी ने मधुबन निवासियों का बाबा से मिलने का, लेकिन जब टर्न में आना है तो सभी को एक जैसा ही व्यवहार दादी जी ने दिया। तो ये विशेषताएं दादी में थी, और जितना वो स्ट्रिक्ट थे प्रशासन में ध्यान था उनका, उतना ही प्यार हम सबको प्रति था, उतना ही नम्रता की थी। जैसे अभी आजकल जो दादी जी के बारे में चल रहा है हर रोज़, उसमें नम्रता की विशेषताएं कई बार रिपीट हुई हैं। तो नम्रता केवल ये नहीं कि हम मोल्ड हो जाएं जल्दी और अच्छी बात ना हो तो भी हम स्वीकार करें, नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ नम्र होना बहुत ज़रूरी है तो दादी जी अपने ऊपर लेके भी बात को स्वीकार करके भी नम्र होके सॉरी करते थे। मुझे याद है कि एक घटना घटी थी हमारे पांडवन के पड़ोस में, किसी से पड़ोसी से झगड़ा हो गया था और उनको बहुत हर्ट हुआ कि ब्रह्मा कुमारी वाले भी ऐसे करते हैं, हालांकि भले शुरुआत उन्होंने ही की थी कि, लेकिन हमारे भाइयों ने को लगा कि हम क्यों ऐसे सहन करें, तो उसको एक की दो सुना सकते हैं ना हम, तो जब उन्होंने एक की दो सुनाया तो उस परिवार को बुरा लगा, तो उनको सॉरी करने के लिए दादी जी स्वयं उनके घर गए और माफ़ी मांग के कि मेरे बच्चों से गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसे ही व्यावहारिक जीवन में भी उनको कभी लगता कि मैंने इसको डांटा है और उसको हर्ट हुआ है तो दादी जी सॉरी कर देती या तो किसी के द्वारा करवाती। मुझे याद है कि किसी भाई के कहने पर दादी जी ने मुझे कुछ इस प्रकार से डांटा जो मुझे लगता था कि दादी जी उनकी तरफदारी करके मुझे डांट रहे हैं, बिना समझ के डांट रहे हैं, मुझे रियली हर्ट हुआ। लेकिन तो उस कारण से क्या हुआ, मैं दो दिन दादी के सामने नहीं गया। नॉर्मली तो रोज़ दादी जी के सामने जाते ही हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता, एक शाम तक अगर दादी जी के सामने नहीं जाएं तो दादी जी पता करते थे, देखो तुलसी का आजकल दिखता नहीं है। तो दो दिन मैं दादी के सामने नहीं हुआ, हालांकि कारोबार सब ठीक चला, लेकिन दादी जी को लगा कि तुलसी को हर्ट हुआ है, तो अभी दादी जी कैसे वो बुलाए। तो दादी जी ने जानकी दादी को बोला कि तुलसी को बुला के आप बात करो, उसको बुरा लगा है। तो और दादी जी ने, जानकी दादी ने मुझे बुलाया और बोला कि दादी जी को लग रहा है बुरा, लेकिन दादी जी तुम्हें प्यार भी कैसे करेगी, तुम जाएगा ही नहीं उनके सामने तो प्यार कैसे करेंगी, आप उनको कैसे आपको महसूस कराएंगे कि दादी को बुरा लगा है। तो मैंने कहा कि जब दादी जी को डांटना था तो ईशू दादी बुलाने आई थी, और प्यार पाने के लिए मैं खुद ही क्यों जाऊं। तो दादी जी ने फिर भाई एक को भेजा और मुझे बुलाने आया ऑफिस में, और दादी जी ने बोला कि सॉरी, मैंने जो सुना तुम्हारे बारे में या जो मुझे कहा गया वो भी कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया, बड़े भाई के द्वारा कहा गया, तो मैंने तुझे डांटा, परंतु मैं समझती थी कि तुम ऐसा नहीं हो, लेकिन फिर भी तो हम आपस में हैं, ऐसा करके प्यार जताया और उस चीज़ को फील कराया कि दादी नम्रता से, ऐसे नहीं कि मैंने तो बोल दिया सो बोल दिया। कई बार हम भाई बहन क्या कहते हैं, नहीं मैंने तो बोल दिया ना, अभी मैं तो नहीं जाऊंगा, या मैं तो सॉरी नहीं कर सकता, मैं तो झुक नहीं सकता। ऐसे नहीं, दादी ने वो इस प्रकार की नम्रता भी दिखाई, और दादी जी ने हमको भी सिखाया। मुझे याद है कि बहन कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए लेके आए, वो कैसेट मोमेंट ही नहीं कर रहे थे, तो रिकॉर्ड उसमें मैं कैसे करता, तो मैंने उनको रूडली बोला कि भाई इसमें नहीं हो सकता है। तो वो रोती हुई दादी जी के पास चली गई, और दादी जी ने मुझे बुलाया बाद में, बोला देखो वो टीचर है, अगर वो यहाँ मधुबन से अपसेट होके जाएगी ना तो सारा सेंटर अपसेट होगा। तो कभी कभी किसी की गलती को देखते हुए समाते हुए हम उसको सहयोग दे देते हैं तो अच्छा होता है, कि हम भले ही गलती उसी की हो हम अगर सॉरी कर देते हैं, या उसको वो कैसेट नहीं चले तो दूसरी कैसेट अपनी तरफ दे दो, लेकिन टीचर अगर मधुबन से संतुष्ट होके जाएगी तो अच्छी सेवा वहाँ भी कर पाएगी। और यही चीज़ हमने देखा थोड़े समय के बाद ही, एक हांगकांग के ग्रुप था, वो मुझे देखे गए कुछ कैसेट्स, कि हम जब फिल्म सॉन्ग्स सुनते थे तो हमने अच्छे अच्छे कैसेट भरवा के रखी थी, लेकिन अभी हम फिल्म सॉन्ग्स सुनते ही नहीं हैं, तो 40-50 कैसेट ही अगर आपको रीयूज हो कर सकते हैं तो अच्छी बात। तो दो चार दिन के बाद ही एक बहन आई, उन्होंने बोला कि मुझे क्लासेस की कैसेट चाहिए, मेक्सिको की थी वो, और कोई ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन इतना पैसा नहीं होगा उसके पास जो पैसा देके खरीद सके, बोला मुझे कैसेट चाहिए, मैं और उसकी कैसेट से सेवा भी करूँगी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, आप चुन लीजिए कितनी कौन सी कैसेट चाहिए आपको, और एक्यूरेट 40 कैसेट उसने चुन लिए कि ये कैसेट मुझे चाहिए। और मुझे ये था कि चलो कैसेट मेरे पास आई हैं तो मैं उसी में ही रिकॉर्ड करके वो बहन को दे दूंगा, तो संतुष्ट होकर जाएगी, शायद बाबा ने उसी कारण उसके नाम से भेजी होगी कैसेट। तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके दिया कैसेट, तो बहुत खुशी हुई। और दो चार दिन के बाद ही जानकी दादी ने मुझे बुला के अप्रिशिएट किया कि तुमने जिस बहन को कैसेट दिया वो भले अभी जॉब कर रही हैं, लेकिन बाबा की अनन्य बच्ची हैं, वहाँ जो UN का ऑफिस है मेक्सिको में, वहाँ से उसका अच्छा कनेक्शन है और अच्छी सेवाएं करेगी। और मैंने देखा 5-7 साल के बाद वो अच्छा सेंटर संभाल रही, 2-3 साल पहले ही उसने शरीर छोड़ा, बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे भाई बहन उनके कनेक्शन से आए। तो दादियों ने केवल खुद ही नहीं व्यवहार किया लेकिन हमें भी सिखाया, क्योंकि दादियों को लगता है कि मधुबन मना उनका अपना मना बाबा का स्थान, तो बाबा के घर से हर एक संतुष्ट होके जाएं, खुश होके जाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हम जैसे कि बाबा का स्टाफ हैं ऐसा महसूस होता है ना, तो बाबा जब आते थे तो हम उनके साथ होते ही थे, लेकिन जब बाबा शांतिवन में आना शुरू हुए तो एक दिन पहले शांतिवन जाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ उतना सिस्टम अभी तक सेट नहीं होता, तो सब लोग कहते अच्छा बाबा का स्टाफ आ गया है तो बाबा अवश्य आएंगे, फिक्स है, है ना, क्योंकि स्टाफ आ गया है, कई प्रेसिडेंट का स्टाफ आ जाता है तो पक्का हो जाता है प्रेसिडेंट आने वाला है, ऐसे ही बाबा का स्टाफ आया है तो बाबा आने वाले ही हैं। ये हमें दादियों ने पक्का कराया कि हम जैसे एक बाबा, जैसे भगवान यज्ञ रच के हमें निमित्त बना के हमारे द्वारा सेवा करवा रहा है, तो ये नम्रता की दादी जी मूर्त है ही। खुश रहना उनका जैसे एक ऑटोमेटिकल था, उनको कभी भी हमने उदास नहीं देखा, कभी भी अचानक हम लोग चुपके से भी दूर से भी फ़ोटो ले लेंगे ना तो दादी का फेस फोटोजेनिक था, क्योंकि अंदर से वो तृप्त भरपूर रहते थे ना। मुझे याद है कि दिल्ली में श्री फोर्ट पे दादी जी का प्रोग्राम था, वहाँ के ऑडिटोरियम में, छोटे ऑडिटोरियम में। तो दादी जी ने खुशी के ऊपर बोला, हालांकि नॉन बीकेस भाई बहने थे, लेकिन सबको महसूस हुआ कि ना खुश होने का तो कोई कारण ही नहीं है। दादी जी ने महसूस हो कह रहा है कि अगर किसी ने शरीर छोड़ा है तो वो तो जाना ही है ना, पक्का है ना, मैं वो शरीर छोड़ेगा ही, आज जो जन्मा है वो तो जाएगा ही, तो इसमें हम ना खुश होने वाली बात ही नहीं है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ऊँचाई नीचे होती है, हमें मालूम है, पहले से ही मालूम है ना, तो हमें ना खुश होने वाली बात ही नहीं है। तो दादी जी ने इतना महसूस कराया उनको कि हमेशा खुश रहना, और सब खुश होके ही निकले वहाँ से ऑडिटोरियम से। तो दादी जी स्वयं खुश रहते थे, क्योंकि दादी जी अपने को हेडेक समझ के हेडेक नहीं लेते थे ना। दादी समझते हम निमित्त हैं, बाबा का यज्ञ है, बाबा अपने आप संभाला है, बाबा ने हमें जो कराया। तो दादी जी समझते थे कि अभी जो समझो कोई टास्क लिया है, अभी पूरा नहीं हुआ तो आगे चल के पूरा हो जाएगा। तो जो धीरज का गुण दादी जी में था, कोई बात नहीं, आज नहीं कल हो जाएगा। कोई भाई बहन आए हैं मधुबन में समर्पण होने के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए आए थे लेकिन घर छोड़ के आए हैं समर्पित होने, तो उस डिपार्टमेंट वाले के साथ सेट नहीं हो रहे हैं, चलो दूसरी जगह ट्राई करेंगे। दूसरी जगह भेजते थे, मानो दूसरे डिपार्टमेंट में सेवा करेंगे। कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहाँ कोई प्रोफेशन की बात नहीं होती, करते करते सीख जाते हैं। हमारे पास आप देखते हैं जो भी डिपार्टमेंट संभालते हैं तो आपको लगेगा ये प्रोफेशनल हैं। मान लो अगर बेकरी से केक भी ले लेंगे, केक देखेंगे या बिस्कुट देखेंगे या ब्रेड देखेंगे तो आपको लगेगा एक प्रोफेशनल व्यक्ति ने बनाया हुआ है, लेकिन वो जब आए थे मधुबन में तो उनको मालूम भी नहीं था कि हमें कुछ इस प्रकार का कार्य भी करना है। ऐसे ही हर कार्य में, मान लो जब मैं मधुबन में आया हूँ तो उस समय कहाँ कंप्यूटर्स थे, तो लेकिन बाबा ने हमें सिखाया, चांस दिया दादियों ने, तो हम बाबा की मदद से हम लोग सीख पाए। और ऐसा ही हमारा परिवार भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जब अब हाँ जी करते हैं तो हाँ जी दादी जी ने सिखाया कि कोई बात नहीं, तुमको नहीं आता ना, हाँ जी करो तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन जो दादियों ने कहा है उसको हाँ जी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दादियाँ के द्वारा बाबा हमें कहलवा रहा है ना, जैसे कि तो बाबा हमें जानता है कि कल्प पहले हमने क्या क्या किया है, तो हाँ जी करने का। तो दादी कहते थी अच्छा तुम शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुमको बोलेंगे अब बुद्धू ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, क्योंकि कोई आते हैं भाई बहन उनको लगता है कि यहाँ ये जो कार्य है ऐसे होता तो और अच्छा है, तो वो उस डिपार्टमेंट वाले भाई के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं जानकार हूँ इस चीज़ का, अगर तुम ऐसे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करते हम लोग हर कार्य सीख गए, जैसे जैसे सेवाएँ मिली वैसा वैसा, और अलग अलग फिर प्रकार के फॉर्मेट भी आए। जैसे हम लोग पहले वीडियो शूटिंग करते थे तो VHS होता था, मोटा सा इतना बड़ा कैसेट है ना, उसकी मशीनरी अलग होती थी, उसके सिस्टम्स अलग होते थे। फिर जब हमने टेलीविज़न में देना शुरू किया तो उसके बेटा कैम आता था, अलग प्रकार का कैसेट आता था। फिर DV कैसेट आया, फिर ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव में लेने लगे लोग, CD DVD में लेने गए, आज तो ऑनलाइन चलता है सब। लेकिन ये सब चीज़ें जैसे जैसे तरक्की होती गई, कुछ हम अपने आप सीखे, कुछ भाई बहन जो आते हैं आप में से वो जानकार होते हैं, वो हमें सिखा के जाते हैं। तो दादियों ने स्वयं भी हाँ जी किया और हमें भी हाँ जी करना सिखाया, तो वो विशेषताएं आती गई है ना। दादियों मूल्यों से, जैसे भाई कह रहे थे मूल्य से, पढ़ाई से प्यार, तो दादी जी के रूम में मैं एक दिन पहले शाम को मूल्य रख देता था और दादी जी उसको रात को पढ़ के सोती थी, और बीच बीच में जब भी आँख खुलती तो मूल्य पढ़ते थे, और सवेरे अमृत वेला योग के बाद तो फिर से मूल्य पढ़ के फिर क्लास में जब आते थे तो सुनाते थे। तो क्लास में जब आते थे इस बीच में रास्ते में कोई हलो हाय भी करता था, कोई दूसरी बातें भी कराता था, सुनाता था, लेकिन जब दादी सुनाते थे मूल्य तो उसमें उन सब बातों का इफ़ेक्ट ना हो के जो जैसा ऑडियंस है वैसी मूल्य चलती थी। मूल्य तो वही होती है और मूल्य पढ़नी ही होती थी, लेकिन अगर टीचर्स बहने बैठी हैं तो वही शब्द जब दादी जी के टोन में आते तो ऐसे लगता बहुत धारणा की मूल्य सुना रहे हैं दादी जी, है ना। तो दादी जी जैसे परिवार वाले बैठे हैं, कोई बुजुर्ग बैठे हैं, तो दादी जी उसको बोलते बाबू जी आप बताओ। तो ये जो रेस्पेक्ट देके बोलने का विशेषता थी दादी जी की, हर एक को विशेष रेस्पेक्ट देना, वो बहुत विशेष था। ऐसे नहीं कि सभी स्टूडेंट हैं तो सभी एक जैसे हैं, हैं तो एक जैसे, लेकिन कोई बड़ा है, बुजुर्ग है या कोई पद वाला है, तो उसको उस प्रकार से पूछने का और उसको इन्वॉल्व भी करने का मुरली में, ताकि ऐसे भी नहीं समझे कि मैं तो जस केवल सुन रहा हूँ, ऊपर से जा रहा है मुरली, लेकिन उसको इन्वॉल्व करके उसका अटेंशन खिंचवा के, और निश्चित है जिसको दादी जी जो प्रश्न पूछेगी तो ऑटोमेटिकली वो याद भी रह जाता था। और मान लो मैं साइड में बैठा हूँ और मुरली दादी सुना रहे हैं, तो अचानक ही तुलसी तुम बताओ, तो फिर बोल भी देते, तुलसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दादी मेरे से भी पूछ सकती है, लेकिन इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहता था दादियों का। तो दादी प्रकाशमणि की ये विशेषता रही कि सबको मुरली से प्यार जुड़ाना, और बीच बीच में जैसे आजकल भी चल रहा है यहाँ ज्ञान सरोवर में तो विशेष चलता ही है कि मुरली के ऊपर प्रश्न उत्तर का एग्ज़ाम रखने का, ये चीज़ दादी ने उस समय भी शुरू की। और रात्रि क्लास में मोस्टली हमारे शांतामणि दादी जी क्लास की शुरुआत करते थे, भले किसी को भी क्लास दिया जाए लेकिन स्टार्टिंग दादी शांतामणि जी कराते थे हिस्ट्री हॉल में, और मुरली रिवीजन से शुरुआत होती थी। बाद में जब कोई जिसको क्लास कराना होता था, दादी उनका परिचय दे के स्वयं उठ जाती थी। तो ये दादियों ने हमें सिखाया, और बहुत सारी विशेषताएं हैं दादियों की, तो क्या क्या सुनाएं क्या नहीं सुनाएं, आप में से पूछेंगे कुछ? चंद्रमणि दादी जी को बाबा ने वैसे तो पंजाब के निमित्त बनाया, और बाबा कहते थे शेरे पंजाब, और न केवल साकर बाबा शेरे पंजाब कहते थे, लेकिन अब एक बाबा भी उनको यही सुन हमने सुना है, अच्छा पंजाब के शेर आ गए। तो दादी ने वही जैसे दादी का जो टोन होता था क्लास कराने का, तो सामने वाले को लगता था जैसे लजा आती थी, मान लो कोई धारणा की बात दादी सुनाते थे तो सामने वाले को लगता अरे इतनी भी धारणा मैंने नहीं की क्या, है ना क्लास में। तो दादी जी का क्लास जैसे ऐसे होता था कि हमें करना ही है, दादी जी का जो टोन होता था वह ऐसे लगता था हमें करना ही है। ये जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ था तो बाबा ने एक बाप दादा ने उनको विशेष जिम्मेवारी दी थी बैच पहना के कि ज्ञान सरोवर के निमित्त बनी हो, निमित्त बनना है। तो दादी जी हमारे ज्ञान सरोवर के शुरुआत में निमित्त बने, तो हर भाई बहन को अपनापन दिया उन्होंने, लेकिन नहीं अनुशासन भी अच्छा सिखाया उन्होंने कि मुरली में आके कैसे बैठना है क्या करना है। तो ये दादी की विशेषता रही। और दादी जी ने जो अंत में, तो दादी चंद्रमणि जब बेंगलोर जाने वाले थे, उससे पहले मार्च में यहाँ फॉरेनर्स का क्लास करा रहे थे दादी जी, 14 ईयर्स ऑफ तपस्या टाइटल था, और बाबा के साथ साथ कैसे उन्होंने तपस्या शुरू की वो दादी जी सुना रहे थे। और लास्ट में क्लास पूरा होते होते उन्होंने ये सुनाया कि अब बाबा हमको बुलाए रहा है कि अब ऊपर आ जाओ, यहाँ सेवा करने वाले भाषण करने वाले बहुत हो गए, बहुत हैं, वो करेंगे अच्छा, आप ऊपर से ज़्यादा सेवा कर पाओगे, तो अब हमारा समय मनसा सेवा करने का है। दादी ने इस स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बोला कि ये मेरा अंतिम क्लास है, लेकिन पूरी बात जैसे बता दी कि अब बाबा हमको ऊपर बुला रहे हैं। तो ये देखा मैंने कि दादियों ने जब शुरुआत की, जैसे हमारे भारत में बताते हैं ना कि पहले पढ़ाई फिर सेवा फिर संन्यास, तो इसी प्रकार दादियों ने भी पहले 14 वर्ष अच्छी तरह तपस्या की और बाबा से सीखा, बाबा ने उनको सिखाया कि कैसे किसको सेवा करनी है, राजाओं को पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, पॉलिटिशियन से मिलना है तो कैसे लिखना है, स्वामियों सन्यासियों को पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, किसे कैसे मिलना है, इतना भरपूर कर दिया और भारत में आकर उनको सेवा स्थानों पर भेजा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को समेटना भी शुरू कर दिया। भले जिसकी भी दादी का हम सुनते हैं देखते हैं तो उन्होंने लास्ट में अपने आप को डिटैच भी करके करते गए, और उसका आधार था ट्रस्ट कि जो आगे वाले आ रहे हैं वो करेंगे, निश्चिंत थे। तो वो अपने को देते गए, जैसे बाबा के लिए सुनाते हैं कि बाबा पहले सेवाओं का समाचार सुनते थे, फिर उसके अनुसार मुरली में हमें शिक्षाएं भी देते थे कि ऐसे की बजाय वैसे सेवा करनी चाहिए। लेकिन लास्ट में जब दादियां उनको समाचार सुनाते थे कि जैसे सुनते हुए बाबा नहीं सुन रहे हो, या कोई लंबा खींचता तो उनको कहते शॉर्ट में सुनाओ, दो शब्दों में सुनाओ, है ना। तो ये चीज़ हमने दादियों में भी देखी, और जैसे मैंने मम्मा से शुरू किया बात को, तो मम्मा को भी पता चला जब कि उनका जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो उसका इलाज नहीं है। तो रमेश भाई साहब ने को जब डॉक्टर ने बोला और रमेश भाई जी ने बाबा को फ़ोन करके बताया, तो बाबा ने बोला कि आप मम्मा को डायरेक्ट ही बता दो ये बात कि वो एक महीने से ज़्यादा लंबा नहीं चल खींच सकेंगे और इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब मामा को पता चला बॉम्बे में, तो मामा ने कहा कि फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं जब इलाज नहीं है, तो अपन मधुबन चलते हैं। तो मधुबन में आके उन्होंने वो सेवाएँ की, और पहले से ही बाबा तो उनको उपराम रहने की भी शिक्षाएँ दे चुके थे, तो उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी स्थिति को संभाला और उस प्रकार से सेवाएँ की। दीदी मनमोहिनी जी के बारे में तो आप जानते हैं सभी कि जैसे जैसे एक समय आया कि उनको लगा कि हमने यूएन में हमारा ऑफिस खुल गया है, तो उनको लगा कि मेरा जो टास्क था विश्व सेवा का वो पूरा हुआ, अभी और करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अब घर जाना है शब्द सेंटेंस शुरू किया, और जब भी किसी से बात करते तो कहते अच्छा मिलते समय ओम शांति, और बिछड़ते समय अब घर जाना है, अब घर जाना है। कभी किसी को दादी दीदी याद प्यार भेजते या पत्र लिखते, उसमें भी यही लिखते लास्ट में कि अच्छा मिलते समय ओम शांति, बिछड़ते समय अब घर जाना है, अभी हमें ये स्लोगन बोलना चाहिए। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जी का भी हमने देखा कि लास्ट में उन्होंने अपने आप को समेट के, जो बाबा कहते हैं कि लास्ट में दादी जी का ये वर्णन था, ये शिक्षाएँ थी या ये बोल थे कि अभी मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो दादियों ने अपने ऊपर इतना ख्याल रखा है कि जैसे जैसे जैसा समय है वैसे वैसे। तो मैंने देखा दादी चंद्रमणि जी चाहे और दादियाँ भी, उन्होंने भी इस प्रकार से पुरुषार्थ में लास्ट में जब दादियों को लगा कि अभी करने वाले बहुत आ गए हैं और अच्छा संभाल लेंगे, तो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देके अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दिया। ऐसे ही दादी जानकी जी का भी आपने देखा होगा कि लास्ट में बस मैं कौन मेरा कौन, ये दादी जी ने रटा हुआ था, मैं कौन मेरा कौन, इससे ज़्यादा लास्ट में। हालांकि दादी तो जैसे मास्टर ज्ञान का सागर थे, जब भी हम जाते थे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुनते थे, और रात शांतिवन में जब तक थे तो शांतिवन में शाम का क्लास उनका होता था। लेकिन धीरे धीरे उनको उन्होंने ज्ञान का वर्णन भी कम करते करते लास्ट में तीन शब्द हैं ओम शांति, तीन ओम शांति, फिर मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, ये दादियों ने अपने ऊपर अटेंशन रखा सभी ने लगभग। ऐसे अपने चंद्रमणि दादी जी का भी जैसे मैंने बताया कि अब बाबा बुला रहा है, बाबा बुलाए रहा है ना। तो यही हमने दादी चंद्रमणि जी के भी विशेष देखा यहाँ। और दादी जी जो ट्रेनिंग होती थी कुमार कुमारियों को, जो टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती थी, उसमें भी दादी जी की स्ट्रॉन्ग पालना होती थी, पालना भी होती थी और साथ साथ सावधानी शिक्षाएं भी ऐसी होती थी कि जो भी दादी जी के समय के निकले हुए हैं दीदियाँ, वो आज बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं और पूरे इंडिया में हैं, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर कोई पंजाब पे या कहीं हों, पूरे इंडिया में तो क्या विश्व में हैं। हम देखते हैं नेपाल की राज बहन, ये सब दादी चंद्रमणि जी की पालना लिए हुए हैं, तो स्ट्रांग हैं, मर्यादाओं में भी स्ट्रांग हैं, आगे औरों को पालना देने में भी स्ट्रांग हैं। दादी जी की विशेषता मैं बताऊंगा कि जैसे छोटों को भी रेस्पेक्ट देना, कभी कोई प्रोग्राम बनता तो दादी जी जो छोटी मीटिंग होती या बड़ों की मीटिंग कहो, उसमें कई चीज़ें फाइनल हो जाती, फिर भी दादी मधुबन निवासियों का एक क्लास रखती और दादी जी बोलते कि ये प्रोग्राम फाइनल हुआ है, लेकिन सेंटरों पे जाने से पहले दादी आपसे रूहान करती हैं, ताकि क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाले तो ये आप ही हो, भट्टियों के प्रोग्राम जाएंगे तो जो आएंगे भट्टी करने के लिए उनका ध्यान रखने वाले तो आप ही हो। इस प्रकार के जो भी प्रोग्राम बनते दादी कहती है इसका प्रैक्टिकल में तो आपको ही करना है, इसलिए आपके बिना पूछे दादी सेंटरों पर नहीं भेजती। और फिर जब सुनाया जाता था जो सेंटरों पर लेटर भेजा जा रहा है वो सुनाया जाता था, और कई बार उसमें करेक्शन हमारे मधुबन निवासी उसमें देते तो दादी उनको करेक्ट करवाने के बाद ही भेजती, या कभी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम तो दादी जी भेजने के लिए सोचा होता था, लेकिन मधुबन निवासियों को लगता था नहीं ये इस समय उसका रूपरेखा नहीं बनी हुई है, आगे चल के देखा जाएगा, तो दादी उस चीज़ को प्रोग्राम को कैंसिल भी करती। ऐसे कुछ कुछ प्रोग्राम जो दादियों ने सोचे लेकिन मधुबन निवासियों की प्रेरणा नहीं रही तो दादी ने वो कैंसिल कर दिए प्रोग्राम, और बाद में पोस्टपोन हो के बाद में हुए जब उनका समय आया तो दादी हम सबको साथ लेके चलते थे, हम छोटों का भी ख्याल रखते थे। मुझे याद है यहाँ अहमदाबाद तक हम लोग दादी जी के साथ जा रहे थे तो कुछ पर्सनल बातें करने का टाइम मिला दादी जी से, जो हम शायद उस समय क्लास के या सबके बीच में नहीं पूछ सकते थे। तो दादी जी को पूछा हमने कि पहले जो बाबा का ज्ञान था, जो शुरुआत थी वो ये थी कि खुदा के बच्चे हम खुद खुदा हैं, जैसे डॉग का बच्चा डॉग, ऐसे गॉड का बच्चा गॉड, हम भी गॉड हैं, मास्टर गॉड हैं। तो दादी जी ने, और जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं वो असुर हैं, इतना बहुत वो अंतर था कि जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं वो असुर हैं, और जो बाबा के बच्चे बने हैं वो तो गॉड के बच्चे गॉड हैं। तो दादी ने कहा कि तुलसी, अगर ये केवल बोल नहीं थे बाबा के, ये बाबा ने हमें अनुभव फील करवाया, हमारे के जो बोले चाचा मामा थे तो उनसे कोई ऐसा नहीं था कि हमारा मोह कम था, लेकिन मोह बाबा ने ऐसे छुड़वाया कि हम जो लौकिक वाले थे, जो ज्ञान में नहीं चलते थे, जब मैं उनको या हम उनको देखते थे तो उनके ऐसे लगता था उनके सिर पे सींग हैं, राक्षस जैसे उनका जो फेस दिखता था, तो हमको लगता था अरे राक्षस जा रहे हैं, हमारे खिड़की से हमको दिखता था वो जा रहे, अरे राक्षस जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। तो बाबा ने मैजिक करके हमें वो फील कराया कि आप ऊँच हैं, और जो बाबा के बच्चे हैं वो सर्वोच्च हैं, और जो बाबा के बच्चे नहीं हैं तो वैसे नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान में परिवर्तन करते आया, क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि अब बाबा कहते हैं कि जो खुद को खुदा कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं, और उस समय था कि खुद खुदा के बच्चे खुद खुदा हैं। तो ऐसे कई प्रश्न थे जो यज्ञ की शुरुआत में और अभी में जो अंतर था और क्यों और कैसे आया। जैसे एक था, दादियाँ हमें सुनाती थी कि जब हम यज्ञ में आए तो हम लोगों ने प्रण किया था कि जब तक स्वर्ग नहीं आएगा, सतयुग नहीं लाएंगे, तब तक हम बाल खुले रखेंगे। तो अभी तो बाल खुले रखने का सिस्टम नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो दादी ने बोला कि जैसे जैसे हम सेवाओं में गए तो वहाँ लोगों का हम यहाँ तक पाकिस्तान में जब तक थे तब तो हम आपस में थे, तो हम कैसे भी रहते थे तो हम आपस में थे और उसी एक दो को भावना से देखते थे, लेकिन जब हम सेवाओं के फील्ड में गए और बाल खुले लेके गए या जो पहनावा हमारा था वो पहन के गए तो हमको उस अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे। फिर धीरे धीरे बाबा के पास जब बातें आईं तो बाबा ने एक चोटी का सिस्टम फिक्स किया, मामा ने बाबा ने एक चोटी का सिस्टम फिक्स किया, उसके बाद सभी को उसी प्रकार के फिक्स बीच में मांग बनानी है और चोटी बनानी है, और अलग अलग प्रकार के बाल नहीं बनाने हैं, एक ही प्रकार का बनाना है, ये फिक्स हुआ। और तब से ही धीरे धीरे फिर साड़ी का सिस्टम शुरू हुआ। पहले तो हम लोग फ्रॉक और सलवार पहनते थे या पजामा पहनते थे, लेकिन वहाँ जब सर्विस फील्ड में गए तो धीरे धीरे ये बातें आती गईं, और जैसे जैसे बातें आती गई बाबा उस अनुसार मामा के साथ बात करके, दीदी के साथ बात करके उस चीज़ का तो हम वो अभी कर पा रहे हैं। तो और भी बातें थी, जैसे मान लो मैं दादी को पूछा कि हम तो आपके कितना नज़दीक हैं, हम रोज़ मिलते हैं, लेकिन कुछ मधुबन निवासी ऐसे भी हैं जो आपके नाम से डरते हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? तो दादी ने उस समय तो ये बोला, तुम कभी भी उनको मिलाने के लिए लेके आओ, दादी तो तैयार है। लेकिन कुछ समय के बाद, 15-20 दिन एक महीने के बाद, दादी ने जब भी सीज़न का थोड़ा बीच में गैप आया, दादी ने एक सिस्टम बनाया कि ये हफ्ता, ये 10 दिन दादी रोज़ मधुबन निवासियों के साथ भोजन करेंगी। तो दादी का जो भोजन का रूम था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग आ सकते थे दादियों सहित। तो दादी ने 5-5 का, 6-6 का ग्रुप बनाया कि अच्छा आज सवेरे दादी के साथ भोजन ये करेंगे, अकोमोडेशन वाले करेंगे, या शाम को ये डिपार्टमेंट वाले करेंगे। इस प्रकार दादी जी ने सिस्टम बना के, ताकि जो मधुबन निवासी हैं उनके साथ भोजन करेंगे तो दादी उनसे मिलेगी जुलेगी, प्रश्न करेगी, वो भी दादी से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो काफ़ी मिल बैठ के बातें करेंगे, ऐसा सोच के दादी जी ने वो प्रोग्राम बनाया, ताकि दादी सबके साथ नज़दीक आ सके। तो ऐसे दादी जी की पालना हम बच्चों को मिली हैं कि हम अपने आप को सक्षम बनाते गए। और दादी कभी भी बहुत गैप नहीं हमें लगता था कि दादी बहुत बड़ी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दादी जी हमारे ऑफिस में बैठे थे कि दादी जी के, मैं जिस इस चेयर पे बैठा था वो ऊंची थी, और जो साथ में दादी जी आके बैठे थे ऑफिस में वो चेयर नीचे थे। तो मैंने जब बोला दादी आप इस चेयर पे आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दादी कि मेरे से नीचे वाली चेयर पे बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, जो भी जो शंकराचार्य वगैरह हैं उनकी कुर्सी हमेशा हाई होती है ना, लेकिन दादियों ने तो ऐसे पालना दी जैसे हम परिवार ही हैं। तो दादी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें बाबा ने इस सीट के लिए फिक्स कर, सेवाएं के लिए निमित्त बनाया, मुझे दादी ने, दादी को इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, हम सब बाबा की सेवा में निमित्त हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कुर्सी की बात नहीं है ना। तो दादी ने महसूस कराया कि दादी और हम जैसे कि एक ही कारवां में चल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत भाई बहनों को या जो गेस्ट आते हैं उनको ध्यान रहता था ना, जैसे दादी बैठे हैं, हमारे कोई भी छोटी भी बहन आके दादी के पास बैठ के बात करती, दादी से पूछती या बताती ऐसे करना है वो करना है, बात करके चली जाती। तो जो सन्यासी हैं बाहर में, जो गुरु लोग हैं, उनको ये चीज़ तो कभी उन्होंने देखी नहीं है, उनके सामने कोई आके शिष्य उनके जो हैं या उनके जो साथी हैं वो भी उस लेवल तक बैठ नहीं पाते, लेकिन दादी जी तो निर्माण थे ना। तो दादी का कभी जो फीलिंग वाली जो सिस्टम है वो नहीं रही, दादी जी ने हम बच्चों को बहुत प्यार दिया। और कोई प्रश्न है? दादी जी गए थे बेंगलोर, दादी चंद्रमणि जी पूछ रहे हैं कैसे अव्यक्त हुए। दादी चंद्रमणि जी गए थे बेंगलोर और उनको थोड़ा सा हार्ट पे पेन हुआ, तो सबने यही समझा कि जो भोजन किया है उसका गैस के कारण प्रॉब्लम है, और उसको गैस की जैसे टैबलेट्स वगैरह दिया, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक होगा ऐसा बाद में समझा गया, लेकिन हॉस्पिटल में गए वहाँ दादी ने शरीर छोड़ दिया। दादी जी का कुमार का नाम तो साकर बाबा के समय में पड़ा था, क्यों पड़ा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दादी जी को ऐसा समझ हम बताते थे कि दादी जी को कुमारों से बहुत प्यार है, इसलिए दादी का नाम कुमार का रखा गया। लेकिन बाबा ने उनका क्या क्यों रखा था नाम, ये तो बाद में हमने एक्सप्लेनेशन निकाला उसका, लेकिन बाबा साकर बाबा ने उनका नाम कुमार का क्यों रखा इतना मुझे भी पक्का नहीं। विशेष ये तो जब जैसे हम बाबा के बने मीन्स जैसे निश्चय हुआ ना कि हम इस परिवार के हैं तो परिवार से जुड़ते गए, तो जैसे जुड़ जाते हैं कोई तो परिवार में जुड़ते हैं तो कोई अच्छी बात आती है कोई अच्छी बात नहीं भी आती है, लेकिन फील नहीं होता क्योंकि फिर भी हम आपस में मिलजुल के बैठ के सेवाएं करते हैं। तो जैसे ही मैं बाबा का बना तो कुमार था और फ्री था, फ्रीडम था, तो इसलिए बहनों के साथ ही बन गया। जैसे जैसे कहीं पर एग्जीबिशन वगैरह रखना है तो हम लोग खुद ही मैनेज कर लेते थे, और मैं इलेक्ट्रिशियन था तो जहाँ भी हम जाते थे ना तो वहाँ कुछ हमें बाबा का परिचय देने का मौका मिलता था। जैसे हमारा काम पूरा होता क्योंकि सारा दिन हमें उनके साथ रहने को मिलता, दो दो तीन तीन दिन कई बार वो फिटिंग करते थे तो वहीं रहते थे। तो लास्ट में जब बीच बीच में गैप आता या लास्ट का कारोबार पूरा होता तो मैं बच्चों से पूछता था कि आप प्रेयर करते हो स्कूल में? हाँ प्रेयर करते हैं। कौन से प्रेयर करते हैं? तो मोस्टली बच्चे ही बताते थे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, या किसी ने संबंध में मतलब परमात्मा को पिता शब्द से। फिर मैं उनको पूछता था कि अच्छा तुम्हारे कितने पिताजी हैं? निश्चित हमारा लक्ष्य जो था हम उस टोन से पूछते थे आपके कितने पिताजी हैं, तो माँ तो सुन रही होते ना पास में तो उनको तो कान खींच तुरंत तो ऐसे हो जाएगा ऐसे कौन सा प्रश्न है तुम्हारे कितने पिताजी हैं। तो फिर उसके ऊपर उनको बताते कि देखो अभी आपने बताया ना कि तुम ही हो माता पिता, वो किसको बोले भगवान को, तो भगवान भी हमारा पिता है ना, तो कितने पिता हो गए? दो पिता हो गए। तो इस प्रकार से ज्ञान सुनाने का एक शुरुआत हो जाता और कई भाई बहन उस फिर सेंटर पे भी आ जाते, कई कई सहयोगी बन जाते। जैसे अजमेर में हम लोग फेयर करने वाले थे तो उसके लिए मॉडल बनाने थे, मिट्टी के मॉडल बनाने थे, तो जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा था वो बिल्डिंग अभी तक रहने के लिए शुरुआत नहीं हुआ था, और हमारे सेंटर के लिए वो मिट्टी के मॉडल बनाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए होता था और वो भी सुरक्षित चाहिए होता था। शहर के बीच में इतनी कोई ऐसी जगह इतना सहज मिलती नहीं है। तो वो भाई को मैंने बताया कि इस प्रकार की सेवाएं हैं और मैं सेंटर पे इन्वॉल्व हूँ, इन कार्य में आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जब उन्होंने बोला कि एक महीने तक तो हम पक्का नहीं रहेंगे यहाँ पर, एक महीना आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इस प्रकार जहाँ लौकिक कार्य करने जाते थे वहाँ से भी अलौकिक सेवाओं में भी हमें सहयोग काफ़ी मिल जाता था क्योंकि हमारा व्यवहार हम उसकी सेवा करता था ऑटोमेटिकली। तो इस प्रकार से इन्वॉल्व हुए और बहनों के साथ सेवाओं में शुरुआत हुई। तो निश्चित है कि जिनके साथ रहेंगे उनके साथ ही अच्छा या बुरा या व्यवहार या अपनापन या कभी अनबन रहेगी। तो मुझे आता था कि जब हम बाबा के बच्चे बने तो पहले तो जो पुराने भाई बहन थे ना वो बहुत खुश होते थे, अब कुमार आया हमारे सेंटर पे और एक्टिव कुमार है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता था कि बहनें जो भी कारोबार होती है उसमें मेरी राय लेती थी या तो मुझे वो काम करने के लिए सेवा करने के लिए देती, तो जो अभी तक बहुत खुश होते थे ना वो उनको ईर्ष्या होती थी थोड़ी बहुत कि अच्छा आजकल तो हमें कोई पूछता नहीं इसको ही पूछते हैं। तो बहनें धीरे धीरे बहनों के सेवाओं को देखते हुए बहनों का सहयोग लेते हुए बहनों की इच्छा होती थी कि तुम वहाँ से बुलाना मुश्किल होता है तुम सेंटर पर रहना शुरू कर दो। तो सेंटर पर रहना जब शुरू किया धीरे धीरे क्या हुआ कि जिन बहनों ने मुझे प्यार देखे खींच के सेंटर पे रहने की इच्छा जगाई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़ी दीदी थे वो मुझे पैसा देते थे, अच्छा तुम 1000 रुपया रखो अपने जेब में, बहनों को कुछ चाहिए तो लेके आने देना, हम बाज़ार में जाते रहते हो तो तुमको बहुत बोल देंगी तो तुम सहज लेके आ सकते हो। तो कभी किसी बहन के मुख से सुना अच्छा अभी हमें तुलसी से मांगना पड़ेगा। तो जिन बहनों ने बुला के हमें आगे किया कभी उनको भी लगा कि अरे अभी इससे मांगना पड़ रहा है। तो हालांकि मैं उस चीज़ को समझ के कोई को कहता अच्छा भाई आपको पर्सनल कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो मैं पैसा दे देता हूँ जो दीदी ने दिया है आप लेके आना, मुझे बता देना, इतना खर्च हुआ है तो मैं दीदी को बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से मांगो ही, है ना। तो आगे बढ़ते गए, एक दिन दीदी ने मधुबन में बुला लिया, तो जिस दीदी ने मुझे आगे बढ़ाया, जो दीदी मधुबन में बीच बीच में सेवाओं में बेचती रहती थी, तो उनको लगा कि वो कहते थे कि मैं आपको मधुबन की सेवा के लिए थोड़ी बिठाया, तुम्हारा जॉब छुड़ाया मैंने यहाँ की सेवाओं के लिए, यहाँ के सेवाएं छोड़ के मधुबन में जा रहे हो। तो जैसे उनको अच्छा नहीं लगा, बाद में भले वो उन्होंने प्यार दिया, लेकिन जब मेरा भाव यह है कि जब जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो जिनसे हमारा कटअप होता है उनको थोड़ी देर के लिए फील होता ही है, तो हम उसको, अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसको रेस्पेक्ट से उस पुल को छुड़ाना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। उनके लिए प्यार हमें रेस्पेक्ट ख़त्म नहीं करना, लेकिन वहाँ चिपक जाए ऐसा भी नहीं हुआ, उसने भावनाओं में आके उनके हम आगे नहीं बढ़ पाए ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य सेवाओं में तो आगे बढ़ना ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपकी विशेषताओं के आप अनुसार आपको मिल जाता है चांस, लेकिन ज्ञान योग में भी हमें आगे बढ़ना ही है। कुछ भाई बहन आपको मिलेंगे जो ऐसे कहेंगे, भले वो पुराने होंगे, नहीं नहीं इतना भी नहीं करो सेवा, है ना, या तो इतना भी धन यज्ञ में नहीं दे दो जो आप कम हो जाए या मांगना पड़े, तो ऐसे ना पीछे खींचने वाले भी होते हैं, है ना। या तो कोई कहेंगे अरे मधुबन वालों में, मधुबन में यज्ञ में करने की क्या जरूरत है, उनके पास तो बहुत फॉरेन से पैसा आता है, आप मधुबन में तो हम जाते हैं, जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ नया मकान बन रहा होता है, तो देखो पैसा आता है ना। तो आपको अच्छे कर्म करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कोई आपको रोके, लेकिन ये डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको अपने आप से पूछना होगा ना। तो मेरा भाव ये अनुभव ये है कि हमें आगे बढ़ना है, न केवल वहाँ तक थी कि दीदी ने बुलाया, लेकिन नहीं, भले दीदी और दादी एक ही जोड़ी थे, और जब मैं आया यहाँ तो जैसे भाई ने बताया मैं दूध के भंडार में सेवा की, और जब दीदी कलकत्ता फेयर में गए थे तो दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में सेवाएं दे दी। तो दीदी जब आए तो दीदी ने बोला मैं तो तुमको अपने डिपार्टमेंट के लिए बुलाया, दादी के लिए कि थोड़ी बुलाया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो ऑडियो विजुअल सिस्टम है या ऑफिस वर्क जो है वो दादी प्रकाशमणि के अंडर में आता था, और रोटी कपड़ा मकान जो लॉजिंग बोर्डिंग सिस्टम है, तो किचन जो है विशेष रूप से, वो दीदी मनमोहिनी जी के कनेक्शन में आता था। तो बाद में मुझे लगा कि दीदी ने तो इसलिए मेरे को दिल लेने के लिए पक्का किया, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में मुझे दादी ने सेवा दी वहाँ सेवाएं करना इतना सहज नहीं लगता था वो लोगों को उस समय, है ना। बाद में तो लगा ही हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये थोड़ा औरों को दिक्कत होता था, तो दीदी को ये लगा, शायद ये लगा होगा कि दादी को ये तुलसी मना नहीं कर पाया होगा इसलिए चला गया, तो शायद इसलिए दीदी ने पूछ लिया कि अच्छा मैंने तो तुमको यहाँ के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली दीदी भी हमें पूछती रही कि कोई दिक्कत तो नहीं है, खुश हो तुम, तो ऐसे पूछते रहे आगे बढ़ाते रहे।
भाई जी जैसे दादियों के टाइम पे दादियों का आपस में बहुत प्यार था और ब्राह्मण परिवार में भी आपस में बहुत प्यार था, तो दादियों ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा, लेकिन आज थोड़ा सा ब्राह्मण परिवार में उसमें कमी आ गई है और पांच लोग भी एक परिवार में बड़ा मुश्किल से एक मत रह पाते हैं, तो ऐसी कौन सी दादियों विशेषता रही, उनका ऐसा कौन सा गुण था जो उस पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध के रखे रहा, जो हमको आज अपनाने की ज़रूरत है।
दादियों को बाबा ने शुरू से ये पक्का करा है कि जो बाबा करा रहा है वो सही है। जैसे उस समय साकर बाबा के समय में कोई समय ऐसा था कि दादी बाबा एक दिन एक दादी को इंचार्ज बनाते थे, दूसरे दिन दूसरी दादी को इंचार्ज बनाते थे। तो एक बार बाबा ने एक छोटी सी कन्या को इंचार्ज बनाया, तो सभी को ये था कि उस छोटी कन्या के अनुसार ही हर एक को चलना है। आपने सुना होगा जो परदादी दादी निर्मल शांता जी की कहानी, तो उस कुमारी ने दादी निर्मल शांता दादी को, जो किचन के भगोने हैं, जो क्या पतीले हैं, वो सफाई करने की सेवा दे दी, तो भी दादी ने ना नहीं किया और करते रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे अलग अलग किसी दिन किसी को इंचार्ज बनाते थे, किसी दिन किसी को इंचार्ज, कि ये पूरे ही यज्ञ के इंचार्ज आज ये है, सभी को उसको फॉलो करना है। तो इस कारण से दादियों की जो आपस में प्रैक्टिस हो गई कि जो निमित्त हैं उसको मानना ही है। जानकी दादी बताती हैं कभी कभी कि जो एक कोई किसी दिन किसी बहन को बाबा ने सेवा दी, इंचार्ज बनाया, तो बाबा दादी बाबा के पास गई तो बाबा महसूस करने लगे कि जानकी दादी के मन में ये चल रहा है कि इसको इंचार्ज क्यों बना दिया। तो बाबा ने सीधा ही बोला, किसी को भी बाबा इंचार्ज बनाए तुम्हारा क्या जाता है। तो दादी बोल रहे कि मैं अभी तक मन में ही था, मैं उस बहन का नाम भी नहीं लिया, लेकिन मुझे था कि इसको इंचार्ज बना दिया। तो बाबा ने पक्का कराया कि जो नियमित हैं, जहाँ के लिए नियमित हैं, बाबा उनके द्वारा करवा रहा है, तो उसके लिए हाँ जी करना जरूरी है। दूसरा दादियों का ये था कि आई एम नॉट लूज़र, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये इसने ये किया, उसने, मेरा क्या चला गया, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ डांटा, मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने डांटा। तो दादियों को ये था कि अच्छा मेरे को कहाँ लगा, है ना, कोई चोट लगी मुझे, या तो मेरा कुछ चला गया, उसने बोला ही ना, ठीक है। तो इस प्रकार से लेट को करने का बहुत प्रैक्टिस था दादियों का। कभी भी कोई बात हुई, कोई इवन कोई मानो यज्ञ में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई केस भी चला, तो दादियों को ये अच्छा ठीक है, केस चल रहा है, केस संभालने वाले संभालेंगे। दादियों को उसका टेंशन या उसका विरोध या रिजेक्शन किसी के लिए ऐसा नहीं हुआ। तो दादियाँ पहले की तृप्त रहीं। जब हम अपने में तृप्त रहते हैं, भरपूर रहते हैं, हम निश्चिंत हैं, तो फिर हमें वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी लगती हैं। जैसे किसी बहुत पैसे वाले का 100 रुपया चला जाता है, चला गया कोई बात नहीं, है ना। तो इसी प्रकार दादियाँ अपने आप में इतनी भरपूर रहीं, तृप्त रहीं आध्यात्मिकता से, कि उनको जो बाकी बातें हैं बहुत छोटी छोटी लगें। और हम कभी कभी क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को सीधा सीधे लेते हैं, जो हमारे पास है उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। मेरे पास हजारों लाखों रुपया पैसा है, या लाखों रुपए का डिपार्टमेंट है, या लाखों रुपए की साधन है, लेकिन दूसरे के ऊपर पास छोटा सा है, तो हमारा दृष्टि उस पर जाती है अगर, तो हम निश्चित है खुश नहीं रह पाएंगे। और खुश नहीं रह पाएंगे तो कुछ ना कुछ हम बोलेंगे मुख से, जो अंदर से संतुष्टि नहीं है, तो हमारे बोल भी वैसे होंगे, इरिटेट होंगे ना। कई बार कोई बोलते हैं, देखो ना मधुबन में भी क्या क्या हो रहा है, तो जो जैसी दृष्टि से आता है उसको वो चीज़ दिखती है ना। मुझे याद है कि दीदी ने मुझे कहा था कि मैं इस ऑफिस में बैठे पूरा यज्ञ को चलाती नहीं हूँ, मुझे वहाँ सब जगह जाना नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रिपोर्टर होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैंने तुमको भी वो काम दिया है, लेकिन तुम वो कर नहीं पाया। क्योंकि रिपोर्टर के हम जब किसी को रिपोर्टर की ड्यूटी मिलती है, तो मोस्टली उसका क्या होता है, मुझे नेगेटिव रिपोर्ट करनी है। अच्छी रिपोर्टिंग बहुत कम लोग करते हैं कि ये बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, दादी दीदी ये मैं गया था तो बहुत आपस में खुश थे। तो किसी को खुश देख के भी लगता है ये हंस रहे हैं, बैल रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। तो रिपोर्टर का मतलब कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि नेगेटिव ही रिपोर्ट है। तो कई बार सेंटर पे समझो कोई बहन कुमारी आके रहती हैं, तो बहन बड़ी दीदी उनको बोलते हैं, मोस्टली नई कुमारी को ही भेजते हैं कि देखो ना वो क्या कर रहे हैं, तो मोस्टली वो नेगेटिव रिपोर्ट देती है। तो समझ में आ जाता है कि ये इसका दृष्टिकोण नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट देखने आती है तो लगता है दीदियों को ये सेंटर पर रहने लायक है कि वो पॉजिटिव देख रहे हैं। तो हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण खुद के लिए औरों के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि मेरा क्या जाता है, जो दादी को बाबा ने कहा तुम्हारा क्या जाता है, तुम अगर ये गलत कर रहे हो, उसको कर्मों की गति मालूम है, ये बड़ा है मेरे से ज़्यादा उसको ज्ञान है, तो मैं उसके लिए बुरा मानो क्यों सोच रहा हूँ, मैं मेरा कोई ड्यूटी थोड़ी है। तो जो जो व्यक्ति के जो गुण होते हैं, जो आकर्षण होते हैं, वो उसको दिखाई देते हैं। मान लो किसी ने मुझसे पूछा, तुलसी भाई आपके पास तो बहुत इंटरनेट फुल है, आप तो यूट्यूब में भी अपलोड करते हैं, उसमें भी करते हैं, आपके पास फुल इंटरनेट है, तो आप कभी फिसल नहीं जाते हैं इंटरनेट में देखते देखते या फेसबुक पे सेवा करते करते? तो मैंने कहा कि जब मैं फिल्म देखता था लौकिक में, तो फिल्म देखने के जिस कोई और शहर में भी जाता था ना, तो पता चल जाता था पोस्टर, वहीं पोस्टर पे दिखते थे कि ये फिल्म है चल रही है, पहले पता चल जाता है यहाँ ये फिल्म चल रही है। लेकिन जब फिल्म देखना छोड़ दिया तो फिर पता भी नहीं वहाँ सिनेमा थिएटर है भी, या पोस्टर लगते भी आजकल लगते ही नहीं। मुझे लगता है आजकल पोस्टर का ज़माना चला गया, शायद लगते ही नहीं पोस्टर, क्योंकि मेरा लक्ष्य फिल्म देखना नहीं है, तो फिल्म वाली चीज़ें दिखती भी नहीं हैं। तो इसी प्रकार जो मेरा लक्ष्य है जीवन का, वो ऑटोमेटिकली मेरा दृष्टिकोण वहाँ जाएगा। अगर मेरा लक्ष्य आगे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का है, तो मुझे वही दोस्त मिलेंगे जो आध्यात्मिकता में उन्नति रखते हैं। अगर मेरा प्रचिंतन या रिपोर्टर बनने का है, तो मुझे उसी प्रकार के लोग मिलेंगे जो इस प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं। मेरे दोस्त भी वैसे ही बनेंगे जो इस प्रकार के बन हैं, क्योंकि कई बार समझो किसी का फ़ोन आता है, तुलसी भाई मधुबन में क्या चल रहा है? तो मैं बोलता हूँ अच्छा पांडवपुर में ये भट्टी चल रही है, ज्ञानेश्वर में ये भट्टी चल रही है, अच्छा और क्या चल रहा है? तो जब वो तीन बार पूछता है ना, और अच्छा और क्या चल रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है ये नेगेटिव सुनना चाहता है। मैं और तो कुछ क्या नहीं चल रहा है, और क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है ना। तो कई बार आप देखें कि जो सामने वाला सुनना चाहता है ना, वो वही सुनना चाहता है जो उसके उसके काम का है, वो चाहता है चुनना चाहता है, या जो औरों को आगे बताना चाहता है ना, उसी का दृष्टिकोण वैसा ही जाता है ना। मान लो आप यहाँ आए हैं, जब आप सुनाएंगे जाएंगे तो मधुबन का अनुभव सुनाएंगे, तो जिसने जैसा देखा होगा वैसे ही वो सुनाएंगे। कोई तो कहेगा मधुबन में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, योग के अच्छे अच्छे अनुभव हुए, फलाने दीदी ने ये क्लास कराया, दाई भाई ने ये बताया, और किसी का अरे वहाँ तो आजकल बहुत ये चल रहा है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। यही चीज़ हमारे परिवार में जब हम रहते हैं, तो हम परिवार में भी ऐसे ही करते हैं कि ईर्ष्या होती है कई बार, इसको जो ये जॉब मिल गया ये तो बनठंड के चलता है ना, तो ईर्ष्या होती है। अगर मैं अपने आप में तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, तो ऑटोमेटिकली इन इन बातों में मेरी दृष्टि जाएगी नहीं, वो क्वेश्चन जाएगा नहीं। और जब मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा चेहरा ऐसा होगा, जो मेरे टोन ऐसे होंगे जो परिवार भी खुश हो मेरे से, और वो परिवार भी मेरे से सहयोगी बन जाएगा।
भाई जी दादियों में तो काफ़ी सारी विशेषताएं थी, स्पेशली बड़ी दादी जी में। हम रोज मुरली भी एक विशेषता सुनते हैं, लेकिन ऐसी कोई दो विशेषताएं जो दादी जी को देख के आपने अपने जीवन में धारण की हो और उनसे आपको काफ़ी लाभ मिला हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई हो, तो जो भाई बहनों ने दादी को नहीं देखा, तो ताकि वो भी उसका लाभ ले सके, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे।
दो शब्द अगर सुनने की है तो ये तो है साक्षी भाव और दूसरा ट्रस्ट। पहला तो ये है, जैसे मैंने जो बात अभी सुनाई उसी से कनेक्टेड है साक्षी भाव। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, जब तक मेरी वो ड्यूटी नहीं है तब तक मुझे उस विषय पे बुद्धि चलानी ही नहीं है। अगर बाई चांस कुछ ऐसा दिख भी गया तो मैं देख समझता हूँ ये उसका कारोबार है, वो सोचेगा उसके बारे में, मैं क्यों बुद्धि चलाऊँ, है ना। दादी जी के पास भी जब कोई ऐसी बात बढ़ के आती थी तो ही वो बुद्धि चलाती थी, अदरवाइज दादी का था कि अच्छा कर रहा है ना, करने दो, अगर कभी फंस जाएगा तो मेरे पास आएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ट्रस्ट था दादी का, जब हम जो भी कार्य करते थे तो दादी समझते थे कि बाबा ने इसको निमित्त बनाया है तो इसमें विशेषता है, वो कर पाएगा और करेगा। तो कभी कभी दादी से पूछते थे कि दादी ये हमें ये कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो ये नया है हमारे लिए, तो बोलते थे अच्छा तुमको जब तक कोई सहयोग नहीं चाहिए, कर पा रहे हो तो करो, करते रहो ना, ताकि अगर तुम मेरे से पूछेगा तो मैं, मुझे तो ये चीज़ें टेक्निकल बातें आती नहीं, लेकिन अगर किसी का सहयोग चाहिए तो मैं बाहर वालों को बोलूँगी कि भाई योगिनी बहन या फलानी बहन किसी टेक्नीशियन को भेजो जो तुलसी को इस बारे में राय दे सके। जब तक कि जरूरत नहीं है तुम करते रहो, आगे बढ़ते चलो। तो कई चीज़ें हम लोग सीखे और कर पाए। तो दादी जी का ट्रस्ट हम बच्चों के ऊपर था। ऐसे ही लौकिक में चाहे अलौकिक में छोटों के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कर पाएंगे। कई बार बच्चे हम आगे बढ़ने नहीं देते बच्चों को, ये होता है नहीं नहीं ये तो छोटी बच्ची है ये कैसे कर पाएगी, है ना, तो हम चांस ही नहीं देते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें सीखने को मिलता है कि हम औरों को चांस दें करने का, भले दृष्टि रखें उनके ऊपर और उनको ये कहें कि अगर गलती हो भी गई जाए तो कोई बात नहीं, तो मुझे बता देना मैं ठीक कर दूँगी, और कुछ नुकसान हुआ तो भी सच बता देना, हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते जाओ। तो एक एंकरेज करने का, ट्रस्ट रखने का, फ्रीडम देने का दादी जी का जो विशेषताएँ थी, मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ और मैं भी रखूँ अपने आप।
भाई जी, एक आपके पर्सनल पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आजकल तो बहुत सारी मशीनरी आ गई है, बहुत सारे कार्य ऑटो होने लगे हैं। पहले तो मेजोरिटी सब चीज़ें मैनुअली थी, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल बजाना हो, चाहे मुरली क्लास का माइक वगैरह, गीत वगैरह, कुछ भी जो भी है। तो और जैसे कॉन्फ्रेंसिस होती थी, उनके सेशंस भी सुबह शाम के ऊपर से टाइम उनका होता था, तो उस टाइम में आप अपने रेस्ट को, अपनी सेवाओं को और अपने योग को, अपनी नींद को, सबको कैसे मेंटेन रखते थे, कैसे बैलेंस करते थे?
जहाँ तक सेवाओं की बात है, मैंने देखा है कि आप में भी सभी, किसी को भी, छोटे बच्चे को भी बोल देंगे ना कि ये इतने बच्चे आपको सेवा करने हैं, तो नींद उड़ जाती है ना। अगर योग के लिए बोलेंगे तो शायद सुस्ती आती हो, लेकिन सेवाओं के लिए किसी को भी सुस्ती नहीं आती है, ये मेरा अनुभव है खुद का भी और औरों के साथ का भी। लेकिन ड्रामानुसार जो मुझे सेवाएं मिली उसमें योग और ज्ञान ऑटोमेटिकली समाया हुआ था, तो सेवा के बहाने भी उठ गए तो ऑटोमेटिकली योग होता है, क्योंकि योग के बीच में गीत बजाने हैं तो आप सुस्त बन नहीं सकते। टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल बजना चाहिए तो टाइम पे बजता था, तो उसके लिए भी सुस्त नहीं होते। जब से मैं बाबा का बना हूँ और जब बहनों को पता चल गया कि कुमार है और टाइम पे पंक्चुअल है, या तो तब से मैं समझता हूँ, जब मैं सेंटर पे भी आता था तो बहनें बोलती थी अच्छा इतने बजे आप आके थोड़ा क्लासरूम ठीक कर देना, अगर सवेरे का बहनों ने नहीं किया है तो आप क्लासरूम सेट कर देना। तो मैं सेंटर पे आते ही क्लासरूम वगैरह सफाई वगैरह ठीक अगर नहीं है तो ठीक करके टेप रिकॉर्डर बजाता। तो तब से ही मैं कहूँगा कि एक आंख घड़ी में एक आंख बाबा में रहती है, पंक्चुअलिटी मस्ट है हमारे इन सेवाओं में, तो टाइम पे गीत बजना ही चाहिए। तो बाबा और टाइम ये दोनों मेरे लिए पैरेलल चले हैं, तो कहीं भी सुस्ती या कोई अलबेलापन का कोई चांस ही नहीं हमारे इन सेवाओं में। और निश्चित है कि हमारे इन सेवाओं पे ही पूरा आधार है ना, सभी गीत बजता है तो योग करते हैं, और अगर ट्रैफिक कंट्रोल लेट बजता है तो कितनों के संकल्प चलते हैं, गीत बज गया अभी तक, 12 बज गया अभी तक गीत बजा नहीं है ना, तो सभी का संकल्प चलता है। तो इतना ही हमें पंक्चुअल अपनी सेवाओं में रहना भी पड़ता है। आजकल पांडवन से एक बस आती है या यहाँ से जो बस जाती है पांडवन, तो 7:30 का बस है तो 7:30 का गीत पूरा होगा तो जाती है, बाई चांस अगर 5 मिनट लेट बस जाए तो 5 मिनट लेट जाएगी बस तो क्या हो गया, सबका जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो ये जो बाबा ने सिस्टम्स बनाए हैं उन्हें उसके आधार पे भी हमें स्वयं पे स्वयं का पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली हो जाता है। मुझे याद है हिस्ट्री हॉल में एक भाई मेरे बाजू में आके बैठता था जहाँ मैं गीत बजाता था, सो रहा करता था वो, तो मैं किसी दिन बोला कि आप सो जाते हो, कहीं मेरा गीत में ऊपर नीचे हो गया, बोलता मैं इसलिए तो बैठता हूँ आपके पास ताकि मेरी भी नींद उड़ जाए। तो धीरे धीरे सच में उसकी प्रैक्टिस हो गई और उसको नींद आना बंद हो गया। तो लेकिन उतना ही फिर मुझे सचेत रहना पड़ता था क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हम हंस रहे हैं उसका प्रभाव सोए वाले पर कम पड़ता है, सोने वाले का हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो इतना ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि बाबा जो जिम्मेवारी देता है उसके लिए विशेषताएँ भर देता है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे इन सेवाओं में टाइम की पंक्चुअलिटी रहती हैं, और ये तो है एक, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं तो तीन दिन दिन कभी कभी रात भर सेवाएं करनी पड़ती हैं। आजकल तो फिर भी हैंड्स आते हैं और जानकार हैंड्स आते हैं, पहले ये होता था कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो हम, दादी कहती थी कुछ ख़राब हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तुम वैसे व्यक्ति को बोला ना जो जानकार हो, तो हैंड्स सेवा में कम आते थे इस प्रकार के, जिनको हम सेवाएं दे सकें और हम निश्चिंत होकर सो सकें, ऐसा होता नहीं था। तो लेकिन फिर भी बाबा ने कई सेवाएं करवाई, कई कॉन्फ्रेंस में ऐसे गीत गायक आते थे तो उनसे केवल न सारा दिन कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम तो करते ही थे, लेकिन उनके द्वारा जो उनकी विशेषताएँ, जैसे गीत गाने वाले कोई कलाकार आ गए तो उनसे गीत रिकॉर्ड करवा के भी हम लोग पूरा सहयोग देते, रात भर जाग के भी वो किए हैं। कई गीत अभी भी बजते हैं जो रात जाग कर रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे योगी जीवन जी कर देखो, ऐसे योगी जीवन जी कर देखो के लिए मुझे याद है कि जो गाने वाली बहन थी तो लास्ट में कहती हैं, क्योंकि वो गीत उसके साथ वाले गीत एक दो बार रिकॉर्ड करने में अच्छे हो गए, वो योगी जीवन जी कर देखो 5-6 बार गाना पड़ा उनको, तो बोलते हैं तुलसी भाई योगी जीवन जी कर देखो गीत गाने में इतना मुश्किल है तो योगी जीवन जीने में कितना मुश्किल होगा। तो ऐसे मैंने देखा कि बाबा ने कई कार्य कराए और उन दिनों में नींद पूरी हो जाता था। मुझे याद है सूरज भाई एक बार उदाहरण दिए थे कि कॉन्फ्रेंस के समय पर उनको फीवर हो गया था तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा 4 दिन पोस्टपोन कर दो ना बुखार को, तो कॉन्फ्रेंस पूरा हुआ तब तक ठीक चला, बाद में वो बुखार फिर से आया। तो ऐसे ऐसे मधुबनी वासियों के अनुभव हैं, तो बाबा जब कराना होता है तो अच्छी तरह